नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टिकी। सब लोग बोलिए कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के इस मंगलवार के 12 अगस्त के संध्या जागृति कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और आप सबका धन्यवाद भी है कीर्तन करने के लिए नृत्य करने के लिए। कीर्तन और नृत्य करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। जो कीर्तन में उत्साह से नृत्य करता है और गाता है, केवल नृत्य नहीं करता है गाता भी है, केवल गाता नहीं है नृत्य भी करता है, ये दोनों जो गतिविधियां हैं वो सभी प्रकार के कर्मों से हमको मुक्त करने वाली है। इसलिए मैं बार बार आपको विनती करता हूँ कि आप नृत्य कीजिए, गाइए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह से बहुत ही सरल तरीका हमारे लिए प्रस्तुत किया है जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो बच्चा है, बड़ा है, छोटा है, बूढ़ा है, या पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, सब प्रकार के लोग इसमें भाग ले सकते हैं। केवल एक प्रकार के व्यक्ति इसमें भाग नहीं ले सकते हैं, बताऊं क्या? जिसको इच्छा नहीं होती। और दूसरा ऐसा कहा गया है कि जिसके ऊपर बहुत पाप का बोझ है वो इसमें भाग नहीं ले सकता। उसका जो पाप का बोझ है वो उसको अलाउ नहीं करता है भाग लेने के लिए। और जो उसके बावजूद भी अपने उत्साह से भाग लेता है उसका सारा पाप का बोझ तुरंत नष्ट हो जाता है। इसलिए जब भी कीर्तन होता है तो किसी को भी संकोच नहीं करना चाहिए। केवल जो गर्भवती कोई है, कोई बहुत बुढ़े हैं, कोई बीमार है, कोई किसी के शरीर में दर्द है तो ठीक है, लेकिन बाकी जो ठीक है स्वस्थ हैं शरीर से उनको कभी भी इसमें भाग लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। कलयुग की ये सबसे बड़ी देन है, सबसे बड़ी, इतनी बड़ी भेंट कोई देवता ने और भगवान ने स्वयं भी नहीं दिया है। इसलिए कलयुग के अंदर अनंत दोष होने के बावजूद भी सारे देवता और सारे ऋषि कलयुग की पूजा करते हैं। कलिर दोषेर निधेर राजन, मतलब दोष का निधि है, ये सागर है दोष का पूरा, लेकिन अस्ति एक महान गुणा। इसमें एक महान गुण है, कीर्तना देव कृष्णस्य, कृष्ण भगवान के नाम का कीर्तन। मुक्त संग परम व्रजेत, इस दुनिया के बंधन से मुक्त होकर जीव जो है परम व्रजेत यानी कि परम धाम में गति प्राप्त कर लेता है। और हम लोग संकोच करते हैं, हमको पता नहीं है कि क्या इसका महत्व है, हमको लगता है मनोरंजन है, हमको लगता है टाइम पास है, हमको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आंदोलन जो है हरे कृष्णा कीर्तन संकीर्तन आंदोलन जो है, हरे कृष्णा संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन, ये जीव को अनंत प्रकार के बंधनों से मुक्ति देने वाला है। जन्म जन्मांतर के बंधनों से वो जीव को मुक्ति देता है, चाहे वो अनंत प्रकार के योनियों में पाप करते हुए आया है, राक्षस योनि में, देवताओं की योनि में जाकर भोग लेकर आया है, अनंत इच्छाओं को लेकर यहाँ पर जन्म लिया है, अनंत पाप कर चुका है, अनंत गलतियाँ कर चुका है, उसके अंदर अनंत विकार हैं, दोष हैं, पाप हैं, मन में पाप बुद्धि है, ये सबका जड़ से नष्ट करने का जो शक्ति है वो इस हरिनाम संकीर्तन में है। और कोई भी आप अगर समझो तीर्थ यात्रा करेंगे, कोई दान पुण्य करेंगे, कोई घर में हवन करेंगे, हाँ गरीबों को हेल्प करेंगे, समाज सेवा करेंगे, मंदिरों में पूजा करेंगे, जाके डोनेशन देंगे, ये सबसे कुछ कुछ पाप नष्ट हो सकते हैं, लेकिन जड़ से पाप नष्ट होना चाहिए मूल से, तो वो केवल हरिनाम संकीर्तन की विधि है। जैसे हम पेड़ काटते हैं ना, जमीन से काट दिया उसको, आपने आपको लगा अभी मैदान साफ हो गया, थोड़ी बारिश आएगी तो क्या होता है, दोबारा उसमें चालू होता है, क्योंकि जड़ वहीं के वहीं रहते हैं और जड़ में जान रहती है। जैसे जल मिलेगा, सप्लाई मिलेगा, तुरंत उसमें कुछ पत्तियाँ कुछ शाखाएँ ऊपर आने लगती हैं, लेकिन अगर हम खोदेंगे और पूरा जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे तो फिर नहीं आएगा वो, उसका सारा चीज़ समाप्त हो गया। पाप का भी ऐसा ही होता है, हम दान पुण्य करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, मंदिर की पूजा करेंगे, थोड़ा शास्त्र पढ़ेंगे, तो जमीन से निकालने जैसा है वो, थोड़ा देर माहौल बन गया, फिर पाप के वृक्षों को शाखाएं और पत्ते और फूल आने लगते हैं, फिर नए नए पाप करने लगते हैं हम लोग, क्योंकि तो जड़ से निकला नहीं ना वो। लेकिन हरि नाम संकीर्तन ऐसा एक माध्यम है जो करने से जो हम जानते हैं और नहीं जानते हैं सारे पाप कर्मों का नाश हो जाता है। सारे देवता लोग जो लाखों साल स्वर्ग लोकों में जीते हैं और वहां पर भोग लेने का प्रयास करते हैं, सुंदर शरीर में जिसके पसीने को बदबू भी नहीं आती, सुगंध आती है, ऐसे फूल होते हैं जो मुरझाते नहीं है, ऐसे फूल वहां पर आते हैं नंदन वन में, ऐसा ऐसा भोग है जिसका वर्णन यहां पर करेंगे तो हम चक्कर आ जाएगी हमको, ऐसा ऐसा खुशियां वहां पर है, यकीन नहीं कर सकते। वो सारे लोग भी उसमें से जो बुद्धिमान देवता है वो कलयुग में हरिनाम संकीर्तन करने वाले वैष्णवों के घर में जन्म लेना चाहते हैं। जानते हैं वहाँ लाखों जीवन लाखों साल तक हम लोग भोग लेते रहेंगे, पुण्य समाप्त होंगे तो यही आना होगा दोबारा, मतलब शुरू है उसकी और अंत भी है उसका, परमानेंट नहीं है वो, दस वर्ग में गए तो उधर ही रहेगा ऐसा नहीं है। क्षणे पुण्य मर्तलोके विचन्ति, जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं मतलब कम हो जाते हैं, अकाउंट खत्म होता है, हाँ सब खाना जितना पैसा था जेब में होटल में खा लिया और कुछ ऑर्डर नहीं कर सकते आप, पैसा खत्म हो गया, अभी जाओ बाहर बिल भर के खत्म। जितना पुण्य का स्टॉक है तब तक स्वर्ग में रहेगा वो, जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे भोग ले लेगा पूरा, दोबारा पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो जो बुद्धिमान देवता होते हैं जो नारद मुनि का संग करते हैं, वो सोचते हैं कि कितना अच्छा है अगर कलयुग में वैष्णव के घर में जन्म लिया तो 60-70 साल में ऐसा परफेक्शन मिलेगा, सिद्धि ऐसी प्राप्त होगी कि दोबारा स्वर्ग में भी नहीं, पृथ्वी में भी नहीं, पाताल में भी नहीं, नरक में भी नहीं, कहीं आना नहीं पड़ेगा, सीधे भगवत धाम में जाएंगे और परमानेंट आनंद वहां पर भोगेंगे, परमानेंट। वहां पर क्षणे पुण्य मर्तलों के विशंति का कोई रूल नहीं है, एक बार वहां पहुंच गया ना फिर व्यक्ति को कोई पुण्य पाप का हिसाब किताब रखना नहीं पड़ता है। जो भी है भगवान की सेवा है, उनके सेवा में आनंद है और कभी दुख नहीं है, कोई रोग नहीं है, बीमारी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, किसी लोगों के द्वारा कष्ट नहीं है, प्रकृति के द्वारा कष्ट नहीं है, हाँ कोई लैंडस्लाइड नहीं है, कोई ढकपुटी नहीं है। कितने कष्ट हम लोग भोग रहे हैं ना आजकल, देख रहे हैं ना हम लोग, एक गांव का गांव नष्ट हो गया, पूरा पत्थर नीचे से ऊपर से पहाड़ नीचे आ गया, कई बार उधर कोकण में कितने दरड़ पत्थर जो है लैंडस्लाइड होते रहते हैं, हिमालय में लास्ट ईयर कितने हजारों लाखों लोग मर गए, ये सारा इसमें से कोई दुख नहीं होगा, वहाँ पर कोई कष्ट नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई यातना, कोई युद्ध नहीं होगा, कोई मारामारी, मर्डर, खून खराबा, बलात्कार, हाँ कुछ नहीं होगा वहाँ पर। वहाँ पर केवल आनंद ही आनंद है, क्योंकि सारी पाप प्रवृत्तियाँ यहीं छोड़ के नष्ट होके हम लोग शुद्ध होकर वहाँ जाएंगे। ऐसे श्री कृष्ण भगवान वहाँ निवास करते हैं जो सभी गुणों के सागर हैं, और उनके संग में रहने वाले सभी लोग ऐसे दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर भी समझो आपको खुश होना है तो आपको खुश व्यक्ति के साथ रहना पड़ेगा जो हमेशा खुश रहता है। जो व्यक्ति सही में खुश है, आनंदी है, उसी के संग में दूसरों को आनंद प्राप्त हो सकता है। समझो अगर मैं दुखी हूँ, अभी बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, तो मेरी कथा सुनने के बाद आपको भी दुख लगेगा बहुत, क्योंकि जो मेरे पास है वही आपको मिलेगा, अलग कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पास जो है वही मैं आपको दे सकता हूँ, मेरे पास जो नहीं है मैं कितना भी प्रयास और कितना भी ड्रामा करूँगा आपको वो नहीं दे सकता। मैं जो मेरे पास है सच में, वास्तव में, सत्य में, वही मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन श्री कृष्ण के लीलाओं में, कथाओं में, नाम में ये शक्ति है कि मेरे पास अभी अगर दुख भी है फिर भी हरिनाम लेते ही एक दिव्य आनंद का अनुभव होता है। हम लोग क्या कहते हैं, सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसका मतलब क्या है, हर रोज गाते आप लोग, कभी सोचा उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि जीव जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमेशा व्याकुल रहता है वो आनंद इस हरिनाम संकीर्तन से बड़ी सहजता से प्राप्त होता है। इसलिए परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। सिंपल बात है, कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये बहुत सिंपल बात है। इसलिए अगर मैं दुखी भी रहूँगा लेकिन जब मैं हरिनाम संकीर्तन में भाग लेता हूँ तो सारे मेरे दुख जो है वैसे ही भाग जाते हैं जैसे जोर से फटाका फोड़ने पर पेड़ पर बैठे हुए सारे पंछी उड़ जाते हैं। उनको बोलना पड़ता है अब फटाका फूटा हुआ है, जोर से आवाज़ हो गए, आप चले जाओ। जैसे ही फटाका फूटता है तुरंत सब लोग हजारों में संख्या में पेड़ से उठकर भाग जाते हैं। वैसे ही जैसे ही हरिनाम संकीर्तन शुरू होता है सारे दुख के और पाप के पंछी जो शरीर रूपी वृक्ष पर बैठे हुए हैं सब चले जाते हैं, और बचता है केवल आनंद जो हमें चाहिए, जिसके लिए हम ढूंढ रहे हैं, सब जगह पर खोज रहे हैं उसको। हाँ, पैसे में खोजते हैं, विवाह में खोजते हैं, परिवार में खोजते हैं, नौकरी में खोजते हैं, बड़े फ्लैट में खोजते हैं, घर में खोजते हैं, जानवरों में देखते हैं, कोई रखते ना घर पे पाल के, उनमें प्रेम खोजते हैं, लेकिन नहीं मिलता है किधर भी, सिवाय भगवान के और भगवान के नाम के कहीं भी आनंद नहीं मिलता है। ये हमको सबको पता होना चाहिए। ये पता करने के लिए आप लोगों को भगवान ने भक्ति विद्या हॉस्पिटल में भेजा है, नौकरी के बहाने या विद्यार्थी बनने के बहाने, ये समझने के लिए कि ये जीवन में, मनुष्य जीवन में भगवान के अलावा और किसी भी वस्तु में आनंद नहीं है जो आपको चाहिए और जिसको आप खोज रहे हो। आप किसी भी धर्म को, प्रॉब्लम नहीं है, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, और कोई धर्म के हो, जू हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सब लोगों के लिए जो मनुष्य कहलाते अपने आप को, उनके लिए यही नियम है, भगवान के साथ जुड़ जाओगे अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के अनुसार, कनेक्शन हो जाएगा आपका तो आपको आनंद मिलेगा। और वो आनंद आप छुपा नहीं सकते। जैसे कोई अमीर होता है ना व्यक्ति, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अमीर होते हैं लेकिन दिखते नहीं है, लेकिन अक्सर अमीर आदमी जो है उसको देख के हम पहचान देंगे अमीर आदमी, तो चेहरे को देख के ही पहचानते हैं। या कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी है उसको चेहरे को देख के लगता है सुंदर नहीं हुआ लेकिन उसको लगता है बुद्धिमान है, बहुत ही इसके बाद बहुत ज्ञान है, लगता है ना, स्कॉलर को देख के पहचानते ना हम लोग। वैसे ही जो व्यक्ति आनंद में रहता है उसको देख कर उसका आनंद जो है वो छुपा नहीं सकता। वो जैसे एक ग्लास में पानी है और डालोगे डालोगे तो ऊपर आएगा ना, वो तो क्या बताता है, वो अंदर पानी है उसके, इसका ये प्रूफ है, और डालने से बह जाएगा, वो इतना भरा हुआ है उसके अंदर। उसी तरह से जिस हृदय में आनंद भरा हुआ है वो कभी छुप नहीं सकता है, उसके संग में जो भी आएगा उसको उस आनंद का क्या कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन। हाँ, अभी तुम लोग अभी रोटा वायरस जिसको इन्फेक्शन हो गया है उसके आसपास जाओगे तो आपको लगेगा ना इन्फेक्शन वो, हाँ खांसी आएगी आपको, आठ दिन बिस्तर में पड़ेंगे आप। बोले क्या हो गया था? हाँ वो एक फ्रेंड थी मेरी, वो खांस रही थी, उसको मेरे परसों मिली थी मुझे वो, उसके साथ मैं आधा घंटा बैठी थी, उसके बाद में ये भी खांसने लगी। फिर घर आई तो उसके बाद आपके साथ आपकी बहन भी खांसने लगेगी, फिर माँ भी खांसने लगेगी। क्यों? जिसके संग में आप गए हो उसके पास जो है वो आपको ट्रांसफर हो जाता है। उसी तरह से जिसके संग में आप आए हो उसके अंदर कृष्ण की भक्ति है, कृष्ण के लिए प्रेम है, भावना है, शुद्धि है, वो आपको तुरंत मिल जाएगी। ऐसे श्री कृष्ण भगवान हैं। और वो क्या करते हैं ना, समझो अभी आपको देश के प्रधानमंत्री को मिलना है तो आप में से कितने लोग मिल पाएंगे? हाथ ऊपर करो। बहुत मुश्किल है, इच्छा तो बहुत है लेकिन मिल नहीं पाएंगे। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्रियों के ऊपर जो देवताएं हैं, उन देवताओं के ऊपर जो ब्रह्मा जी हैं, उनके ऊपर जो विष्णु हैं, उनके ऊपर जो श्री कृष्ण भगवान हैं, सर्व पुरुषोत्तम सर्व कारण कारणम, उनको आप बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। केवल उनका नाम पुकारेंगे तुरंत आपको उनकी कनेक्शन, मुलाकात, संबंध प्राप्त हो जाएगा। यहाँ के लोगों को मिलना मुश्किल है बोल, लेकिन जो सबके ऊपर है दिव्य पुरुष उसको कांटेक्ट करना है तो उन्होंने अपना नंबर सबको दे दिया है। 16 नंबर का नंबर है उसका, 16 नंबर का क्या नंबर है वो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग एक बार जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस व्यक्ति को यह रहस्य पता चल गया वो इस पृथ्वी तल का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही है, यजन्ति ही सुमेधसा, मतलब वो व्यक्ति जो सुमेधसा, मेधा मतलब बुद्धि और सुमेधा मतलब बहुत ज्यादा बुद्धि, बहुत श्रेष्ठ बुद्धि, उसका नाम सुमेधा रखा गया है। जो व्यक्ति सुमेधा है, जिनके दिमाग में बहुत बुद्धि है, ऐसे ही व्यक्ति इस संकीर्तन के महत्व को समझ सकते हैं और जीवन में उतार कर जीवन को धन्य कर सकते हैं। इसलिए आपको औरत बनने की जरूरत नहीं, आदमी बनने की जरूरत नहीं, हाँ किसी भी योनि में आप रह सकते हो। अगर आपको ये समझ में आया तो आप सबसे बुद्धिमान हैं। उसको कहते हैं सद असद विवेक बुद्धि, इसकी व्याख्या की गई है। जिसको सत्य क्या है और असत्य क्या है, भौतिक क्या है और आध्यात्मिक क्या है, दिव्य क्या है और इधर का क्या है, वो समझ में आता है। उसको कहते हैं सत असद विवेक बुद्धि। विवेक का मतलब वो रैशनलाइजेशन बोलते हैं उसको, विवेक बुद्धि का मतलब जो फर्क कर सकता है कौन सा दिव्य है कौन सा भौतिक है, कौन सा मटीरियल है कौन सा स्पिरिचुअल है, कौन सा दुख देने वाला है और कौन सा आनंद देने वाला है, कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है हमारे आत्मा के कल्याण के लिए। ये जिसको समझ में आता है उसको कहते हैं सद असद विवेक बुद्धि वाला बुद्धिमान जीव। भगवान ने उसको सुमेधसा कहा है भागवत में। तो ऐसे श्री कृष्ण भगवान जिनके संग से हर जीव का कल्याण होता है। कोई लोग उनको अल्लाह के नाम से जानते हैं, कोई लोग उनको भगवान के नाम से जानते हैं, कोई लोग और कुछ नाम से जानते हैं, लेकिन है तो वो एक ही व्यक्ति। हम लोग उसको कृष्ण के नाम से जानते हैं, कोई राम से नाम से जानते हैं, एक व्यक्ति है वो। जिस व्यक्ति के संबंध से, उस व्यक्ति की लीलाओं को समझने से, उस व्यक्ति के महानता को समझने से हमारे जीवन का कल्याण होता है। आप चाहे उसको गंभीरता से लो या मत लो, लेकिन बात तो सच है ये। हम कहे क्या रे टाइम पास है, तो क्या कि टाइम किसको है करने के लिए, भी तो देखेंगे बाद में क्या होता है, इतने सारे काम पड़े हुए हैं किधर टाइम है सब करने के लिए। सोचता है ठीक है आपके विचार है कोई बात नहीं। दूसरा व्यक्ति सोचता है कि अरे जीवन कितना छोटा है और कितने सारे विकार अंदर बैठे हुए हैं, उसको नष्ट करके कब हम शुद्ध बनेंगे, कब योग्य बन जाएंगे भगवान के धाम के पास, अर्जेंसी इमरजेंसी है, तुरंत स्वीकार करना चाहिए उसको, तुरंत जीवन में अपना कर उसको परिपूर्णता प्राप्त करके भगवान के लोक में जाना है। इस जीवन के अंत में दोबारा नहीं आना है यहाँ पर, इतने करप्ट दुनिया में, इतनी भ्रष्ट दुनिया में दोबारा नहीं आना है। ये दूसरे व्यक्ति का विचार है, उसको उसको अपने अपने विचारों के अनुसार फल मिलेगा। जो जो धारणा आपके मन में है, जो विचार आपके मन में है, उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। तो ऐसे भगवान का जन्मदिन है अगले, कभी है संडे को है, संडे को रात को है, और मंडे को क्या है? नंदोत्सव। नंदोत्सव यानी नंद महाराज ने अपने बेटे के बर्थडे पे बड़ी पार्टी दी थी, उसका नाम नंदोत्सव है। भगवान का जब भी जन्म होता है उनके माता पिता बड़ा उत्सव मनाते हैं। जब राम जी का जन्म हुआ था तो कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा और दशरथ जी महाराज और उनकी 350 रानियों ने मिलकर बड़ा उत्सव मनाया था राम जी के जन्मदिन के ऊपर। राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत चारों का जन्म एक ही समय हुआ था, कुछ कुछ घंटे के बाद में। वैसे श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, ऑन द स्पॉट भगवान ने दर्शन दिया। उनका जन्म जो है वो हमारे जैसा नहीं हुआ जैसे हम सोचते हैं, लेबर पेन, फिर वो डायलिटेशन और पिटोसिन ड्रिप, और वो फिर अभी हेड नॉट फिक्स्ड अप, फिर उसके बाद में ब्रीच प्रेजेंटेशन, फिर क्या करना है, ओटी में लेना है, फिर सीजर इंसेक्शन, फिर एनेस्थीसिया, फिर स्टिचेस, ऐसे सब नहीं होते उनका। जन्म कर्म चमे दिव्यम ऐसे कहा गया, वो तो दिव्य जन्म है उनका। वो पहले सबसे वसुदेव के हृदय में आते हैं, प्रकट होके वसुदेव बहुत सुंदर बन जाते हैं जैसे भगवान उसके हृदय में प्रवेश करते हैं। प्रकाश निकलता है वसुदेव के शरीर से, फिर वसुदेव के हृदय से भगवान देवकी के हृदय में जाते हैं, और देवकी अचानक बहुत सुंदर लगने लगती है, और फिर देवकी के हृदय से भगवान देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं। जैसे हम सोचते वैसे नहीं करते प्रवेश, जैसे हमारे बच्चे जैसे आते जैसे हम आए वैसे नहीं आते हो, इसलिए उनका जन्म जो है दिव्य कहा गया है। अब जीसस क्राइस्ट की भी कहानी पढ़ेंगे ना तो वैसा ही जन्म है उनका। मदर मेरी को वर्जिन रखे ही जीसस का जन्म हुआ था, मतलब वो कुमारिका ही रह गई, इसलिए वो दिव्य माता है। वैसे ही अदिति वामन देव की माता, वैसे ही कृष्ण गर्भ की माता कृष्णी, वैसे ही राम जी की माता कौशल्या, ये सबका जन्म ऐसे ही हुआ। यहाँ तक कुंती भी, जब सूर्यदेव उसके पास में आए तो कुंती ने पूछा, मैं तो कुमारिका हूँ, मेरा शादी भी नहीं हुआ है, मैं तो भी मेरा कुमारिका कौमार्य भंग हो जाएगा मेरा। तो उसने कहा, नहीं, हमारा ये वरदान रहेगा आपके लिए कि हमारा बेटा जो हम आपको देंगे, जो आपका पुत्र के रूप में आएगा, वो कांच जन्म लेगा, और आपका कौमार्य जो है, आपकी वर्जिनिटी इंटैक्ट रहेगी। और कर्ण का जन्म जो है वो 9 महीने के बाद में नहीं हुआ, ऑन द स्पॉट उसके कान से जन्म हुआ सूर्य भगवान की कृपा से। इसको दिव्य जन्म कहते हैं। अगर आप बोलेंगे अरे ये सब बकवास की बात है, ऐसे बोलेंगे तो हम लोग यहाँ पर इसी भूमि पर बार बार जन्म मृत्यु के श्रृंखला में बंधे रहेंगे। अगर आपको समझ में आएगा हाँ हमारे और भगवान के जन्म में बहुत अंतर है, वो दिव्य जन्म है, हमारा भौतिक जन्म है, तो भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो उसको जैसा है वैसा समझेगा। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति मामेति सो अर्जुना, ऐसा व्यक्ति को जो समझ में आया है वो दोबारा इस जन्म में पृथ्वी पर जन्म नहीं लेगा। न इति मामेति सो अर्जुना, इधर नहीं आएगा दोबारा, वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा वो। तो कितना जरूरी है समझना ही हमारे लिए, बताओ। केवल ये बात समझना है कि जो भगवान कार्य करते हैं और जो हम कार्य करते हैं इसमें अंतर है। नंबर वन, हम जो कार्य करते हैं उसके फल बनते हैं, वो फल हमको भोगना पड़ता है। भगवान जो कार्य करते हैं वो दिव्य होते हैं, उसके फल नहीं होते, वो दिव्य कार्य होते हैं। उसकी दिव्यता को हम समझेंगे तो हम दोबारा नहीं आएंगे यहाँ पर। आज जो कष्ट भोगते हुए यहाँ जी रहे हैं वैसा जन्म के लिए दोबारा नहीं आएंगे यहाँ पर। इतनी बड़ी बात है, देखो आप सोचो, ये जीवन उसके लिए दिया है, न केवल न मेकअप करने के लिए और अपने आप को शोभा बढ़ाने के लिए, अपनी धन कमाने के लिए, बहुत अमीर बनने के लिए, प्रसिद्ध बनने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए, बहुत सारा साधन जोड़ने के लिए नहीं दिया गया है। ये समय बहुत कीमती है। शरीर को चलाने के लिए जो भी को आप कुछ करना है, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई हाउसकीपिंग अटेंडेंट है, वो केवल इस पेट को पालने के लिए धंधा है आपका बस, और कुछ नहीं है। मेन धंधा हमारा वो नहीं है, मेन बिजनेस क्या है ये समझना, ये समझना केवल मनुष्य जीवन में मुमकिन है। अगर आपके बदले में यहाँ पर कुत्ता और बिल्लियाँ बैठे होती और मैं यही बोलता होता जो मैं बोल रहा हूँ तो उनको समझ में आता क्या? वो नहीं है, उनके अंदर वो सॉफ्टवेयर नहीं दिया भगवान ने, वो सॉफ्टवेयर नहीं दिया है जिससे वो समझ में आ जाए। आपके अंदर, सबके अंदर वो सॉफ्टवेयर दिया है, आप सबके अंदर वो जानकारी भगवान ने दी है मनुष्य होने के नाते, आप ये समझ सकते हो। अगर आपने सोचा कि हमको नहीं समझना है तो हम लोग दुर्भाग्य हैं। इतना सुंदर सॉफ्टवेयर आपको दिया गया है मनुष्य जीवन का, जिसमें आप ये बात समझ सकते हो। पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है आपको, पीएचडी करने की, एमडी करने की जरूरत नहीं है, एमबीबीएस करने की और सीए करने की और इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है। खाली ध्यान से सुनना है, बस श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ सुनना है आपको, तो आपका जीवन धन्य है। शायद प्रधानमंत्री भगवान के पास नहीं पहुंचेगा, आप लोग पहुंच जाएंगे भक्ति विधान में आने के बाद, अगर आप केवल श्रद्धा से इसको स्वीकार करेंगे तो। यहां मिल रहा है आपको, दे रहे हैं आपको, आप लेने में सफल रहे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। फिर आप क्लर्क की नौकरी करो या नर्स बनो या अटेंडेंट बनो या डॉक्टर बनो या एमडी बनो या डायरेक्टर बनो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि यमराज के पास जब हम पहुंचते ना तो कोई सिरा तान के वहां पहुंचता नहीं है, चार कंधों पे वहां पहुंचता है ना। क्या विचार है आपका? प्रधानमंत्री का मृत्यु होगा तो क्या वो चल के जाएंगे ऐसे लेफ्ट राइट करके? नहीं, वो कंधे पे जाना पड़ेगा। कोई क्रिश्चियन देश का अगर कोई राजा है तो कॉफिन में जाना पड़ेगा उसको, कोई मुसलमान देश का राजा है सऊदी अरब का तो भी कॉफिन में जाना पड़ेगा उसको, आड़ा होकर जाना पड़ेगा। जीवन भर सीना तान के चलते हैं लेकिन मृत्यु के बाद में आड़ा होकर चलना पड़ता है। लेकिन इनमें से कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं तो भारत देश का प्रधानमंत्री था, मुझे तो भगवान के धाम में प्रवेश मिलना ही चाहिए। उल्टे बाजू में हटो, वो कोई चपरासी आएगा बोलेगा मैं आपका शुद्ध भक्त हूँ, उसको अंदर ले जाएगा। वहाँ पर एंट्री का पास जो है वो भक्ति के ऊपर मिलेगा, आपके पद के ऊपर नहीं मिलेगा। आपने कितना धन कमाया है, कितने रोड पे आपका नाम दिया है, इस पर नहीं मिलेगा एंट्री वहाँ पर। नहीं नहीं, वो तो मीरा रोड में मेरा नाम का रोड भी है, हाँ वो बॉम्बे में भी एक रोड है, वो नागपुर में मेरे नाम से एक रोड है, मैं इतना प्रसिद्ध हूँ, सब पेपर में मेरा कितनी बार नाम आया है, सब इतने मेरे चाहते हैं, हाँ मेरे वेबसाइट के ऊपर कितने लोग लॉग ऑन करते हैं, मैं इतना फेमस हूँ, इतनी लड़कियाँ शादी करना चाहते हैं मुझसे, इतने मैं फेमस हूँ। उसमें से किसी भी योग्यता के लिए आपको वहाँ पर प्रवेश नहीं मिलेगा, कि आप कितने सुंदर हो और कितने प्रसिद्ध हो और कितने धनवान हो, कितने यशस्वी हो, यहाँ पर नो एंट्री। भगवान का भजन किया है, भगवान के ऊपर श्रद्धा है, भगवान की दिव्यता पर विश्वास है आपको, तो आपको वहाँ एंट्री मिलेगी। तो उसी भगवान की कथा सुनना, तब कथामृतम श्रवण करना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। कर्तव्य हमको बहुत करना है, रुचि लेनी है भगवान में, दिमाग से दुनिया में जीना है, हृदय से भगवान से प्रेम करना है। हम लोग क्या करते हैं? एग्जैक्टली उल्टा करते हैं। दिल से दुनिया में जीते हैं और दिमाग से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। किधर है भगवान, दिखता तो नहीं है, कैसे विश्वास करूंगा मैं? ऐसे 50 प्रश्न पूछेंगे, ये ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हृदय में आ गए वो? हमारा तो जन्म तो ऐसा नहीं होता है, मतलब दिमाग लगा रहे हैं ना, दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन वो दिमाग लगाना बेवकूफ़ी का काम है, सिंपल है बहुत। इसलिए दुनिया में पैसा कैसे कमाना है, नौकरी कैसे करनी है, वहाँ दिमाग लगाओ और हृदय भगवान के लिए लगाओ। जब हृदय भगवान को लगाओगे जल्दी भगवान प्राप्त होगे, दिमाग से प्राप्त करने का प्रयास करोगे ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। माइक्रोस्कोप बनाओ, हाँ सुपर माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप बनाओ, कहाँ है भगवान ढूंढो उसको, नहीं मिलेगा। ऐसा कोई यंत्र नहीं बना सकते आप दिमाग से, रॉकेट स्पेस रिसर्च, हाँ यान भेजो मंगल पर चंद्र पर, कहाँ पर जीव है, कहाँ भगवान है ढूंढने के लिए, नहीं मिलेगा आपको। यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा, उसको पूछो आप कहाँ पर हो, वो बता रहे हैं मैं कहाँ पर हूँ, जहाँ मेरे भक्त आकर मुझे पुकारते हैं, दो से अधिक भक्त एकत्र होकर मुझे पुकारते हैं, वही मैं हूँ। बाइबल में भी लिखा है वेयर मोर देन टू कम टुगेदर इन माई नेम आई अपियर देयर, सब धर्म में यही कहा है। तो आज मैं आपको एक भगवान की लव स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, कितने लोगों को सुनना है, मुझे भी कहने को आनंद आएगा। लव स्टोरी किसको नहीं अच्छा लगता है, सबके कान खड़े होते हैं, नींद से भी उठ जाते हैं, फिर कौन किस पर प्रेम कर रहा है बताओ मुझे। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सब लोगों को सारे इमोशंस का अनुभव करना अच्छा लगता है। हम लोग पिक्चर भी देखते हैं, बताओ एक्शन, इमोशन, सनसनीखेज, हाँ सब चाहिए हमको उसमें। ये सब कुछ भगवान की कथा में है। क्या नहीं है भगवान की कथा में बताओ आप? एवरीथिंग इज देयर। प्रेम विवाह है, हाँ लोगों के बीच में अपनी प्रेयसी को उठा के ले जाना है, युद्ध करना है, शत्रुओं को मारना है। हम लोग कैसे पिक्चर में हीरो ने विलन को मार दिया, सब ताली बजाते हैं थिएटर में, वाह वाह वाह, सबको अच्छा लगता है कि हीरो ने, हाँ जिसने अच्छे आदमी ने बुरे आदमी पर विजय पाया, जो बुरा आदमी है उसको हीरो ने मारा, सब लोग हीरो की तालियां बजाते हैं, फिर हीरोइन उसकी हो जाती। यहाँ पर भी ऐसी स्टोरी है। हाँ देखो कंस ने बहुत अत्याचार किया है ना, परेशान हो गए, माता पिता को कैद में रखा भगवान के बहुत साल तक, फिर भगवान को बहुत मारने का प्रयास किया, मार नहीं पाया। फिर बोले और एक आइडिया किया, अभी मैं ना एक धनुर्यज्ञ बनाऊंगा, ऐसा यज्ञ करूंगा, उस यज्ञ में इनको बुलाऊंगा, कृष्ण बलराम को, और वहां पर कुश्ती वाले लोगों को बुलाऊंगा और उनको मार दूंगा बच्चों को। तो पहुंचते हैं वहां पर, नहीं बहुत लंबी सुंदर कहानी है, संक्षेप में आपको बताते हैं। तो कृष्ण बलराम वहां पर गए, पहले हाथी को मार डाला, कुबलिया पीठ को, उनका प्लान था कि हो सकता है तो आने के पहले ही वहां मार दिया जाए तो अच्छा है, लेकिन वो जो इतना बड़ा हाथी था उसका वध कर दिया उन्होंने, उसका धस्ती दंत तोड़ के ऐसा कंधे पर रख के आ गए बीच में। उनको लगा तो हाथी इनका डेड बॉडी लेके आएगा, लेकिन आया तो इसका ही अस्थि दंत लेके आ गया वो। फिर चाणूर मुष्टिक, पहाड़ जैसे योद्धा थे वो, ये बच्चे नन्हे से कोमल बालक, उनके फूल के पंखुड़ी जैसे उनका बॉडी है, नरम नरम। लोग बोल रहे क्या ये अन्याय है, ये पहाड़ जैसे योद्धा है, ये देखो इतने बच्चे के साथ में उनका लगाया गया है। लेकिन सबके आंखों के सामने दोनों पहाड़ जैसे योद्धा का मृत्यु हो गया। फिर और तीन आए, शल, तोशल और कूट, उनका भी वध किया गया। फिर और दो आए, पहले दो आए चाणूर मुष्टिक, उनका वध किया गया। फिर शल, तोशल और कूट का वध किया गया। फिर कंस को भगवान ने बाल पकड़कर घसीटकर मार डाला। बाल क्यों पकड़ा? उनकी माता का बाल पकड़ा था उन्होंने, जो शादी हुई थी। कंस ने अपनी बहन देवदेव की, भगवान की माता का बाल पकड़ के तलवार से उसके सर काटने का प्रयास किया था, उसी को याद रख भगवान ने उसके बाल पकड़ के उसको खींचा, सब स्टेडियो से घसीट के लेके आए और मुक्के से मारकर उसकी जान ले ली। फिर उसको बाल पकड़कर पूरे रणभूमि के अंदर पूरा घुमाया उसको घसीट कर। अभी क्या हुआ, कंस की दो पत्नी थी, अस्थि और प्राप्ति, आपने सुना था कभी? कोई सोचता नहीं कंस की पत्नी के बारे में, वो भी बेचारी विधवा हो गई ना। वो कौन थी पता आपको? वो जरासंध की कन्याएं थी, क्योंकि कंस ने इतना पराक्रम किया था, देश विदेश में जाकर दिग्विजय किया था, सब जगह जाकर राक्षसों को उन्होंने परास्त कर दिया था। तो ये देखकर जरासंध के ऊपर जब आक्रमण करने लगा वो, तो सोचने लगा जरासंध की इतना बड़ा पराक्रमी तो अपना मित्र होना चाहिए, युद्ध करने की जरूरत क्या है, सैन्य को मारने की जरूरत क्या है। तुरंत वो डर के नहीं, बुद्धिमानी से अपने दो कन्याओं को लेकर रणांगण में आ, बोला कि युद्ध नहीं करना है, आपको कन्याओं को देने को आया हूं मैं। तो कंस ने दोनों के साथ विवाह किया। तो जैसे ही कंस का वध हो गया, दोनों कन्याएं विधवा होगी ना, जरासंध बड़ा परेशान हो गया, बड़ा दुखी हो गया, उसके अंदर द्वेष और गुस्सा आने लगा उसको। तो महाभारत में जितना सैन्य था ना, उससे डेढ़ गुना सैन्य लेके वो आया। हमको लगता है कि महाभारत में सबसे अधिक सैन्य इकट्ठा हुए थे, ऐसा नहीं है। जरासंध 17 बार आक्रमण किया उसने, और हर बार महाभारत के 18 अक्षौहिणी से डेढ़ गुना अधिक, मतलब 24 अक्षौहिणी सैन्य लेकर आया वो हर बार, और अकेले कृष्ण ने सबको मार डाला, क्योंकि भगवान है वो। हम बोलेंगे ऐसे कैसे मुमकिन है, एक आदमी दो आदमी को मार सकता है अधिक से अधिक, लेकिन भगवान तो भगवान है, उनके पास 6 सिद्धियां हैं, 6 ऐश्वर्य हैं, अनंत बल है उनके पास, अनंत शस्त्र है, अनंत अस्त्र है, विद्याएं हैं। तो आप पूछेंगे अरे जरासंध को क्यों नहीं मारा उन्होंने? भगवान बड़े चतुर हैं, वो जानते थे कि जरासंध के अंदर इतनी द्वेष है मेरे लिए कि मैं सबको मारूंगा, इसको छोड़ दूंगा, तो वो इतना अपमानित होगा कि मुझे नहीं मारा उसने, रणभूमि में अपमानित करके भेज दिया, जाओ तुम्हें हम जीवन दान देते हैं। तो वो अधिक द्वेष से, अरे इसको फोन को निकाल दो वहां से, तो जरासंध को और अपमानित करके वो भेजते थे, और हर बार वो दुनिया भर के राक्षसों को इकट्ठा करके उनके सामने आता था। तो भगवान कहते हैं मेरा जन्म अवतारी मैंने लिया है राक्षसों को मारने के लिए, तो मैं क्यों जाऊँ उनके पास मारने के लिए, ये आदमी लेके आ रहा है अपने दरवाजे पे तो अच्छा ही है। ये उसका रहस्य है। इसलिए भगवान ने उनको 16 बार उन्होंने आक्रमण किया, 16 बार भगवान ने उसको नहीं मारा, सबको मार के उसको अकेले भेज दिया। 16 बार परास्त हो गया वो, कितना अपमान है क्षत्रिय के लिए, 16 times। 17वीं बार भी उसने आक्रमण किया, तो इस बार भगवान ने क्या किया, कुछ युद्ध वुद्ध किया ही नहीं, सीधा युद्ध भूमि से चलने लगे पीठ दिखाकर, जैसे कोई घबर गया हो, डर गया हो, हाँ जो कमजोर हो गया हो। तो जरासंध को आश्चर्य होता है, अरे इस बार कृष्ण बलराम दोनों बिना शस्त्र उठाए रथ से उतर के पैदल जा रहे हैं पीठ दिखाकर। तो बड़ा द्वेष आया उसको, जरासंध ने कहा हे कायरो, हे गाय को हकाने वाले लोगो, तुम्हारे पास बल नहीं है, तुम तो ऐसे ही कमजोर व्यक्ति हो, गाय चलाने वाले हो, ग्वाले हो तुम लोग, हम क्षत्रिय हैं, तलवार चलाते हैं, बाण चलाते हैं, उनके सामने खड़ा रहना सीखो, डरपोक कहीं के, ऐसा करके पीछा करने लगा। लेकिन युद्ध का नियम है ना, कोई शस्त्र हाथ में नहीं लिया होगा तो उसका युद्ध नहीं होता है, जब तक वो रथ में नहीं आएगा, जब तक शस्त्र नहीं उठाएगा, तो रथी आदमी उसके हाथ युद्ध नहीं छेड़ सकता है। तो ये तो चलते रहे और वो गाली देते देते उनके पीछे 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 आते रहा, लेकिन वो आराम से चलते रहे। फिर वो एक पहाड़ पे चढ़ गए, बहुत ऊंचे पहाड़ पे। तो इसने क्या किया, उनको मारने के लिए सब लकड़ियां पहाड़ के चारों ओर इकट्ठा कर दिया और आग लगा दिया उसको, सोच के कि ये पहाड़ को जला दूंगा तो ये दोनों जल जाएंगे उसके अंदर। जैसे ही आग जलने लगी तो कृष्ण बलराम ने पहाड़ के उस तरफ से छलांग लगाई सीधे द्वारका के पास। ये भी भगवान ही कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते, कभी ट्राई मत करना ऐसे कभी। भगवान ने छलांग लगाई और पैदल वो द्वारका पहुंच गए। अब पूछिए भगवान ने क्यों किया ऐसा, जिसको 16 बार उसने ऐसा परास्त किया है, मतलब मराठी में नामुष्की, मतलब ऐसा संकोच कर दिया उसको 16 times, एक बार नहीं 17वीं बार वही आ रहा है और चैलेंज कर रहा है, तुम उसको पीठ दिखा के जा रहे हो, लोग बोलेंगे तो ये तो कावड़ आदमी है, मतलब डरपोक आदमी। इसलिए भगवान का नाम पड़ा रणछोड़, आज भी रणछोड़ के नाम से उनको पूछते हैं उधर गुजरात के अंदर। अगर हमारा हम और आप कभी युद्ध में भाग जाएंगे तो हमारी पूजा की जाएगी, हे देखो डरपोक, ये हमारा देवता है, इसको हम पूजा करते हैं। लेकिन भगवान जब रण छोड़ते हैं तो उनको रणछोड़ नाम से उनकी पूजा की जाती है। आज तक 5000 साल हो गए वो मंदिर में, कितना गर्दी होती है रणछोड़ दास की पूजा करने के लिए, रणछोड़ महाराज, रणछोड़ भगवान, क्योंकि भगवान सबसे विरक्त हैं। जिसको यश प्राप्त है, 16 बार जिसने परास्त किया है, वो यशस्वी व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने यश को छोड़ देता है, उसको आसक्त नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कारण था, इसके पीछे कारण ये था, भगवान को 17वीं बार जरासंध पे विजय प्राप्त करने से अधिक महत्वपूर्ण क्या था भगवान के लिए, एक भक्त उनको पुकार रही थी। वो कहाँ थी, नागपुर में थी, विदर्भ देश में, उसका नाम था रुक्मिणी, सुना है ना आपने, हाँ अभी मैं आपको रुक्मिणी कृष्ण की लव स्टोरी बताने वाला हूँ। रुक्मिणी छोटी सी थी, राजा भीष्मक की कन्या थी वो, और आज जिसको नागपुर कहते हैं, जिसको विदर्भ देश कहते हैं, उस विदर्भ देश में उसका राज्य था। उसको 5 भाई थे, सबसे बड़ा भाई था रुक्मी, बड़ा पराक्रमी था वो, और रुक्मिणी सबसे लास्ट थी, सबसे प्रिय थी वो, बहुत सुंदर थी, ऐसा वर्णन करते हैं कि देवता लोग उसकी सुंदरता देखकर पागल होते थे, इतनी सुंदरता थी, केवल 12 वर्ष की जब थी वो इतनी सुंदर थी। तो रुक्मी जो था उसका शिशुपाल से फ्रेंडशिप था, शिशुपाल जो था वो कृष्ण का कजिन ब्रदर था। तो उसका जन्म हुआ ना तो उसके 3 सर और 3 पैर थे, कैसा दिखता होगा वो। तो उसकी माता को बड़ा दुख हो गया, वो कुंती की चचेरी बहन थी, तो बड़ी परेशान थी वो कि ये ऐसा राक्षस जैसा बालक मैं कैसे बड़ा करूंगी उसको। तो कृष्ण ने आके बताया कि जो कोई इसको गोद में लेगा, और जो कोई इसको गोद में लेगा, और गोद में लेने के बाद इसके 2 एक्स्ट्रा सर और 1 एक्स्ट्रा पांव निकल जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा, उसी के हाथ से उसका वध हो जाएगा। तो उस समय उसको जरूरत थी कि ये 2 एक्स्ट्रा सर और 1 पैर निकल जाए, बाद में मृत्यु के बारे में देखा जाएगा, जीवन तो मिलेगा पहले उसको, फिर मृत्यु के बारे में सोचेंगे। तो शिशुपाल की माता ने उस सबको गोद में देना आरंभ किया। कुंती की गोद में दिया, भाई के गोद में दिया, बहन के गोद में दिया, सबके गोद में दिया, कुछ नहीं हुआ। फिर कृष्ण के गोद में दिया, जैसे ही कृष्ण के गोद में दिया, दो एक्स्ट्रा सर और एक्स्ट्रा पैर जो निकल गया वो नॉर्मल हो गया वो। लेकिन शिशुपाल की माता को बड़ा दुख हुआ कि मेरा जो भतीजा है, हाँ भांजा जो है, उसी के हाथ से इसका मृत्यु हो जाएगा। कृष्णा कुछ करो मेरे बच्चे के लिए, प्लीज़ आपके हाथ से इसका वध होने वाला है तो इसको कुछ वरदान दो। तो भगवान ने कहा कि इसके 100 अपराध में माफ़ करूँगा, आप चिंता मत करो। 100 अपराध मतलब एक एक अपराध से मैं उसको मार सकता हूँ, ऐसा अपराध करेगा ना, ऐसे 100 अपराध माफ़ करूँगा, जिस एक अपराध के लिए मृत्यु दंड देने के योग्य है वो, ऐसा 100 अपराध मैं उसको माफ़ करूँगा, उसके बाद मैं उसको मारूँगा। तो अभी उसके ऊपर डिपेंड है वो कितना करता है। तो वो शिशुपाल जो था, वो जन्म से जैसे बड़ा हो गया, वो तब से उसने भगवान का निंदा, भगवान का शत्रुत्व, भगवान से द्वेष करने का आरंभ किया। उसका रोम रोम भगवान का द्वेष करता था। उसी के साथ रुक्मी की फ्रेंडशिप थी, रुक्मिणी के बड़े भाई की, और पिताजी का भी मन था कि मेरे बेटे के लिए तो कृष्ण ही सबसे अच्छा वर है। सब विदर्भ देश के नागरिक थे, उनके मन में भी इच्छा थी कि कृष्ण सबसे अच्छा वर है हमारी रुक्मिणी के लिए। इतनी सुंदर रुक्मिणी, हमारी महालक्ष्मी जैसी है वो। लेकिन रुक्मी जो था बड़ा पावरफुल था, हाँ पॉलिटिकल दृष्टि से भी, राजकीय दृष्टि से, शक्ति से, शास्त्र तेज से सबसे पावरफुल था वो। तो पिताजी के ऊपर उसने अपना रोब जमाया और पिताजी को कहा कि नहीं, इसकी शादी मैं मेरे मित्र से ही करूँगा। पिताजी उदास हो गए, क्या करें, लेकिन बड़ा लड़का है, शक्तिशाली है, वो बूढ़े हो रहे थे तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और शादी भी तय हो गई। लेकिन रुक्मिणी जब से बालिका थी तब से उनके घर में नारद मुनि, अंगिरा मुनि, बहुत सारे मुनि लोग आया करते थे और उनके महल में उन मुनियों की सेवा होती थी राजा के नेतृत्व में, और सबके मुंह से उन्होंने कृष्ण का गौरव सुना था। जब वो नागपुर में थी तब कृष्ण द्वारका में, मथुरा में, सब जगह थे, उनकी न्यूज़ आते ना अलग अलग लीलाओं की, वो सुनती थी वो बालक अवस्था से, कि बाल्यावस्था में भी इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, गोवर्धन को उठाया है, उसको पता था। तब से ही उसने अपने मन में कृष्ण को वर लिया था कि मेरा पति कृष्ण होना चाहिए। जब ये शादी तय हुई तो बड़ी दुखी हो गई वो, क्या करें अभी, बड़े भाई के इच्छा के खिलाफ तो जा सकती नहीं। पिताजी भी शांत बैठे हुए हैं, वो भी हताश हैं, क्या करें अभी, क्या करें। तो वो सोचती है कि अभी रो के कुछ फायदा नहीं है, कुछ योजना बनानी पड़ेगी, कुछ आइडिया करनी होगी, कुछ दिमाग चलाना होगा, रोके क्या होगा। हाँ संकट जब आता है तो आदमी को रोना नहीं चाहिए, संकट का उपाय सोचना चाहिए कैसे निकले उसके बाहर। तो एक योजना बनाती हो, अपने सबसे विश्वास का जो ब्राह्मण है उसको बुलाती है और एक खत लिखती है, उसको कहते हैं लव लेटर। वो लिखती है और ब्राह्मण को देती है, वो कहती है कि अभी 2 दिन में मेरी शादी है, सब जगह उत्सव चल रहे हैं, सब लोग भोजन बांट रहे हैं, मेरे घर पे फीस्ट चल रही है, भोजन सबको दिया जा रहा है, सब लोग गीत गा रहे हैं, सब लोग आनंद मना रहे हैं, समय बहुत कम है, तो आप रातों रात निकल जाना। रथ लेकर भेजती है उसको, तो द्वारका जाना और कृष्ण को मेरा खत देना। तो सबसे इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है मालूम है, उसने कृष्ण को कभी देखा नहीं था, केवल सुनकर, उसके बारे में सुनकर उससे प्रेम हो गया था उसको। इसका मतलब ये होता है कि कृष्ण भगवान को देखने का प्रयास मत करो, उनके बारे में सुनने का प्रयास करो। उनको समझना है तो आप आँखों से नहीं समझ सकते उनको, आपको कान से समझना होगा, क्योंकि दुर्योधन के सामने भी वो खड़े थे, लेकिन दुर्योधन ने पहचाना क्या उनको, बोलते ये तो चेटुक है, इसको अरेस्ट करो। तो सामने खड़े होने से क्या होता है, वो तो कर्ण के सामने भी खड़े थे, दुशासन के सामने भी खड़े थे, हाँ और धेनुकासुर, अरिष्टासुर, कंस, सबके सामने खड़े थे वो। देखे क्या हुआ, कुछ लाभ हुआ क्या, नहीं लाभ हुआ उनका। लेकिन जिन्होंने सुना उनके बारे में श्रद्धा से जो श्रवण करता है उसको भगवान प्राप्त हो जाते हैं। अभी वो उस व्यक्ति को लव लेटर दे रहे हैं जिसको कभी देखा ही नहीं है, लेकिन प्रेम ऐसा हो गया कि उसको ही हृदय अर्पण कर दिया है। तो ब्राह्मण रातों रात द्वारका पहुंचते हैं, इसीलिए भगवान उस समय युद्ध को छोड़कर घर आते हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी भगवान, सब जानते हैं मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, वहां पर मेरी जो भक्त हैं रुक्मिणी देवी मुझे पुकार रही है, ऐसा प्रसंग है कि टाइम बहुत कम है, लेट हो जाएगा तो कुछ नहीं हो सकता है उसके अंदर, एक बार विवाह हो गया तो फिर क्या करें उसके लिए। इसलिए बहुत अगतिक होकर, अगतिक मतलब डेस्परेट होकर वो याचना कर रही है कि भगवान हे मेरे प्रिय प्राण प्राण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, हे द्वारकाधीश, मैं आपको चाहती हूँ कि आप मुझे वर लें। अभी एक ही उपाय बचा है, अभी विवाह तो तय हो चुका है, लेकिन हमारे विवाह संस्कार में एक पद्धति होती है कि दुल्हन को विवाह होने के पहले दुर्गा देवी के मंदिर में जाकर, अंबा देवी के मंदिर में जाकर पूजा करनी होती है माँ के साथ और सहेलियों के साथ। और वो जाना घर से बाहर जाकर दूर मंदिर में पूजा होती है और वहाँ से दूर से फिर वापस घर लौट के आना होता है। तो मेरी ये इच्छा नहीं कि आप हमारे राज दरबार में आ जाओ और वहाँ से मुझे उठा ले जाओ, ताकि बहुत ज़्यादा मान हानि मतलब मनुष्य हानि सैनिक हानि होगी ना, उसमें युद्ध होगा तो बहुत सैनिक मरेंगे। इससे अच्छा मैं जब आऊँगी दुर्गा देवी के मंदिर में तो जाते समय या पूजा होने के आते समय आप मुझे वहाँ से उठा लेना। और कहती हैं कि मैंने बचपन से मेरा हृदय आपको अर्पण कर दिया है, आप मेरे प्राणेश्वर हैं, मैं जानती हूँ आप स्वयं भगवान हैं, मैं तुच्छ हूँ, मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये संकोच छोड़कर कह रही हूँ। वैसे तो मुझे ऐसे कहना नहीं चाहिए एक राजकन्या होने के नाते, लेकिन अभी मेरे पास कोई उपाय नहीं है, अगर मैं संकोच में बैठी रहूँगी तो मेरे दिल की बात आप तक पहुँचेगी नहीं, इसलिए संकोच छोड़कर मैं आपको कह रही हूँ कि मैं आपको चाहती हूँ और मैं आपको विनती करती हूँ कि आप भी अगर मेरे प्रपोजल को स्वीकार करते हो, मेरे प्रेम को आप स्वीकार करते हो, तो कृपा करके आ जाना। और आ जाकर मुझे जब मैं जा रही हूँ पूजा के लिए या तो आ रही हूँ वहाँ से, उस समय छीन लेना मुझे, आप उठा कर ले जाना। उसको कहते हैं वेरी बोल्ड लेटर। उसने उसने उस समय ऐसा रिवाज नहीं था किसी को खत लिखने का। हाँ, उस जमाने में रुक्मिणी ने अपने प्रेम में वश होकर अपने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पण करने के लिए डेस्परेट होकर अगतिक होकर उसने वो खत लिखा था। प्रश्न ये उठता है कि क्या हम लोग भगवान के लिए उतने अगतिक है क्या, उतने डेस्परेट है क्या जितनी रुक्मिणी थी? क्योंकि वो इतनी डेस्परेट थी इसलिए भगवान ने 17वीं बार अपने शत्रु पर विजय पाना छोड़ दिया, त्याग कर दिया उसको। तू दे मुझे गाली, को प्रॉब्लम नहीं है, तेरी गाली से मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी भक्त की पुकार। तू मेरा अपमान कर रहा है, मुझे डरपोक कह रहा है, मुझे 16 बार मेरे हाथ से परास्त होकर भी मुझे अपमानित कर रहा है, चलेगा मुझे, लेकिन मैं जाऊँगा मेरे भक्त को बचाने के लिए। क्योंकि अगर युद्ध में लड़ते बैठा तो महाभारत के 1.5 गुना सैन्य को मारते मारते तो कितने दिन बीतते उसके अंदर, टाइम नहीं था उनके पास। इसलिए अपना मान सम्मान यश त्याग दिया भगवान ने। और वहाँ पहुँच गए, तैसे ही ब्राह्मण आ गया, ब्राह्मण ने खत दिया, ब्राह्मण का सत्कार किया भगवान ने, ब्राह्मण ने खत पढ़ के दिखाया, मानो रुक्मिणी का जो हृदय है वो रोते रोते भगवान से याचना कर रहा था, पुकार रहा था भगवान। और ऐसे भी नहीं कि आपको आना ही है, आपको आना ही होगा, ऐसे नहीं, वो विनती कर रही है कि मैं मेरे हृदय की भावना व्यक्त कर रही हूँ, मैं पता नहीं कि आपके मैं योग्य हूँ कि नहीं, आप मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं, लेकिन मैं आपको विनती करती हूँ कि मैं आपकी हो गई हूँ, अब अगर आप इच्छा रखते हो तो मुझे आकर ले जाइए। ऑर्डर नहीं कर रही हैं, आजकल के लड़कियाँ कैसे करती हैं, यू हैव टू कम अदरवाइज आई विल जम्प फ्रॉम 5th फ्लोर मैं मेरे हॉस्टल से कूद जाऊँगी अगर तुम नहीं आओगे 6 बजे तक, तुम टिक 20 पी जाऊंगी डाइल्यूटेड बोगस वाला वैसे नहीं थी वो, केवल पुकार रही थी असहाय होकर। ऐसा प्रेम होना चाहिए भगवान के लिए, तो भगवान ऐसा महत्वपूर्ण युद्ध भी छोड़ के आएंगे हमारे लिए। तो भगवान तुरंत दारुक यानी अपना जो सारथी था उसको बुलाते हैं, रथ जोड़ो तुरंत, मतलब नो मोर टाइम। हाँ, ऐसा नहीं कि बैग भरूंगा अभी 2 घंटे लगेंगे निकलने के लिए, अभी थोड़ा मीटिंग बाकी है द्वारका सभा में, थोड़ा निपटा के आता हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम्स हैं चल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऑन द स्पॉट निकलते हैं वो। उसके बीच में बलराम जी का विवाह हो जाता है रेवती के साथ में, जब वो आ जाते हैं उसके बाद में फिर ये खत आता है। फिर वो ऐसे कहा गया है कि 1000 माइल का अंतर था द्वारका और नागपुर के बीच में, आज पता नहीं कितना अंतर है लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर था। वो एक रात में अपने 4 स्पेशल घोड़ों के साथ में वो कवर करते हैं, रातों रात ब्राह्मण को लेकर ओवर नाइट चलते हैं, मतलब सोना बना कुछ नहीं है, अपने भक्त के लिए नींद भी अपनी त्याग कर रहे हैं भगवान। ऐसे नहीं कि वो स्लीपिंग बर्थ में एसी में जा रहे थे और सो रहे थे, सुबह उनका अराइवल था उधर प्लेटफॉर्म पे, ऐसा नहीं था, रथ में हवा की गति से जा रहे हैं, सोने का काम नहीं है वहाँ पर कुछ, और सुबह सुबह वहाँ पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर क्या माहौल था, रूमर फैल जाती है कि रुक्मिणी ने खत भेज दिया है कृष्ण को, और बचपन से वो कृष्ण को चाहती हैं, हो सकता है कृष्ण आ जाएंगे यहाँ पर। तो वो जो शिशुपाल का पिता था ना, दमघोष नाम था उनका पिताजी का, वो जानते थे कि कृष्ण आएंगे तो युद्ध होगा। तो जब वो अपने बारात लेके निकले, बहुत सारा सैन्य भी लेके निकले, तो क्षत्रियों का रिवाज बड़ा अलग होता है ना, वो हर शादी में क्षत्रियों के सर फोड़ी हो जाती है। हाँ देखो कितना इतिहास पढ़ेंगे पुराण में आप, हर विवाह में किसना किसका के वध हो गया है। वो क्षत्रियों का आनंद है, वो खून बहाने के बदले में उनका शादी विधि कुछ होता नहीं है। तो वो साथ में ब्राह्मणों को ले जा रहे हैं, गाय को दान करने को ले जा रहे हैं, जेवर भी लेके जा रहे हैं, और साथ में बड़ा सैन्य भी लेके जा रहे हैं। और जितने भी लोग आ रहे हैं वो भी सैन्य को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कृष्ण यहाँ पर आ सकते हैं और रुक्मिणी उनके ऊपर ऑलरेडी मोहित हो गई है, और शिशुपाल श्री कृष्ण का शत्रु है, तो इसमें कुछ गड़बड़ होगा, तो हमको भी सज्ज होना चाहिए, शुड बी रेडी। तो शादी के राज्य में ऐसा लग रहा है कि युद्ध की तैयारी हो रही है, ऐसे सब सैन्य जमा हो रहा है, इसका सैन्य आ रहा है, उसका सैन्य आ रहा है, सबका स्वागत किया जा रहा है। और भीष्म को भी डाउट है मन में कि पता नहीं कृष्ण आएंगे तो क्या होगा, और कृष्ण आने की खबर आ जाती है कि आ गए वो सुबह सुबह, तो उनका स्वागत करते हैं। और ऐसा लिखा है कि एक सुंदर से गार्डन में जो महल था उसमें उनको उन्होंने रुकाया, स्वागत किया उनको, वहाँ पर रिसीव किया उनको, अच्छे अच्छे भोजन और व्यंजन और मिठाइयाँ और अलंकार और गाय देकर उनको सत्कार किया, उनकी पूजा किया, उनको विश्राम दिया अच्छी तरह से, मीठे मीठे वचनों से उनको स्वागत किया। और शिशुपाल और रुक्मी को बहुत टेंशन आया कि आ गए वो भी, गड़बड़ तो होने वाला है। और फिर रुक्मिणी को पता नहीं, तो ब्राह्मण भाग भाग के फिर अकेला आ जाता है और गुप्त रूप में उसको कहता है कि कृष्ण आ गए हैं। तब रुक्मिणी बड़ी खुश हो जाती है, तब तक श्रृंगार करने में उसको आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि श्रृंगार किसके लिए कर रही है, वो शिशुपाल के लिए, विवाह के लिए श्रृंगार हो रहा है, तब तक उसको आनंद नहीं आ रहा था। लेकिन जब कृष्ण आए ऐसे खबर मिली तो उसको श्रृंगार करने में आनंद आया बहुत। एक स्त्री का हृदय कैसे होता है, अपने प्रिय व्यक्ति के लिए श्रृंगार करने के लिए बहुत खुशी होती है उसको, लेकिन जो अप्रिय व्यक्ति है उसके लिए कभी सजेगी धजेगी नहीं, वो कभी भी नहीं, उसका दिल ही ऐसा कोमल होता है। और वो तैयार होकर फिर अपनी माता, अपनी सहियाँ सखेलियाँ और अपनी दासियाँ, ऐसे हजारों लोगों को लेकर उसका जुलूस निकलता है मिरणुक। उसमें ब्राह्मण लोग श्लोक गाते हैं, संस्कृत की प्रार्थनाएं गाते हैं, संगीतज्ञ लोग संगीत बजाते हैं, कोई लोग नृत्य कर रहे हैं, ऐसा सुंदर राजकुमारी का विवाह का जुलूस है ना वो, देवताओं के मंदिर में सारे स्त्रियां वो सुंदर सुंदर सोने की थाली में पूजा का सामान लेकर जा रही हैं, बहुत सारे भोग बनाए हुए हैं, मिठाइयाँ बनाई हुई हैं, हार है फूलों के, सुंदर सुंदर अत्तर हैं उसके अंदर, अगरबत्तियाँ हैं, धूप हैं, ये सब बड़ा सुंदर। और द्रौपदी का सौंदर्य ऐसा था कि देवता भी लालायित हो रहे थे उसको देखकर, इतना सौंदर्य था उसका। तो बहुत सारे लोग इस विवाह के लिए दूर दूर से आए थे राजकुमार लोग, और सबके मन में ये तमन्ना थी, अरे काश यही मेरी हो जाए, कब दिखेगी हमको। तो उसको देखने के लिए उसके महल से लेकर अंबाजी के मंदिर तक दोनों तरफ राजकुमार घोड़े पे खड़े होकर देखने के लिए आए थे, लेकिन कब देखने को मिलेगा उसको, उसका सौंदर्य का दर्शन करने के लिए दोनों तरफ सारे राज्यों के राजकुमार जो वीर थे वो सब खड़े थे दुर्गा देवी के मंदिर तक। और ये बहुत सुंदर सुंदर, जैसे हिरण चलती है ना, बहुत सुंदर हिरणी, ऐसे बहुत आकर्षक तरीके से चलते 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 वो दुर्गा मंदिर पहुंचती है। वहाँ पर माता के साथ में दुर्गा की पूजा की जाती है बड़ी ही धूमधाम से, और उसको उम्मीद है ना कि मैं निकल तो गई हूँ, तो शायद वो जाने के समय मुझे उठा लेंगे, तो जाने के समय तो दिखते नहीं किधर वो, उसका मन कैसे होगा, दोनों तरफ देख रही है कहाँ है कृष्ण, कहाँ है, कहाँ पर है, यहाँ पर आए, रस्ते में आए क्या, मंदिर में पहुँचने के पहले उठाएंगे कि क्या करेंगे। मंदिर पहुँच जाती है, दुर्गा की पूजा होती तो भी दिखते नहीं किधर, पूजा समाप्त होती है, पुजारी उसको महाप्रसाद देते हैं, मालाएं पहनाते हैं भगवान की, देवी की, दुर्गा की। और जब वो उसको दिखाई नहीं पड़ते हैं तो वो सोचती हैं कि अरे मैंने केवल कृष्ण का ही विचार किया, कभी शंकर जी, गणेश जी, पार्वती जी, कार्तिकेय, लक्ष्मी जी, कभी इसका विचार नहीं किया, शायद सब देवता मुझे नाराज़ हो गए क्या, क्या मेरे उनको पूजा नहीं किया इसका फल दे रहे हैं कि वो कृष्ण को नहीं भेज रहे हैं क्या, ऐसे बहुत सारे विचार उसके मन में आते हैं। तो दुर्गा देवी को प्रार्थना करते हैं, दुर्गा देवी मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आपकी चार संतान हैं, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश जी और कार्तिकेय, मैंने आपके चारों देवी देवता आपके बच्चे हैं, दोनों दो देवता हैं और दो देवियाँ हैं, और आप और शंकर जी हैं, इन लोगों की किसी की मैंने पूजा नहीं की, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मुझ पर क्रोध नहीं करना, मेरी मन की इच्छा, मेरा वर जो है उसको मुझे प्राप्त करा देना। सर रो रो के वो पुकार रही है उनको, मेरी से गलती जो हो गई है, पाप मैंने किए होंगे, गलतियाँ की होंगी, मुझे माफ़ कर देना आप लोग। और देवी उनको प्रसाद देती है। और फिर जब लौट के मुड़ती है और पूरे ऊंचाई से देखती है कौन है, तो उन राजकुमार को बीच में उनको कृष्ण भगवान दिखाई पड़ते हैं। अभी वो आप पूछेंगे पहचाना कैसे उन्होंने, बताओ कैसे पहचाना होगा। प्रेम ऐसा वस्तु है कि सबकी पहचान हो जाती है उसके अंदर। जिस पर आपने हृदय दिया है वो आपका प्रियतम है, वो प्रेम की पावर से ही आप उसको पहचानते हो। वर्णन तो सुना था वो कैसे हैं, नीले रंग के हैं, मोर पंख पहनते हैं, सब कुछ वर्णन सुना था, लेकिन उससे उसने नहीं पहचाना उनको, हृदय के प्रेम की भाषा से पहचाना उनको। और वो इतनी खुश हो गई उस समय कि आज तक जिसका मैंने दर्शन नहीं किया वो आज मेरे खत का रिस्पॉन्स के रूप में स्वयं आए हैं यहाँ पर। मैंने ब्राह्मण को वहाँ भेजा, क्या उम्मीद थी कि वो आएंगे, स्वीकार करेंगे, उसको डाउट था कि इतनी देर तक ब्राह्मण ने आ रहा, मतलब उसने ब्राह्मण ने जो दिया हुआ प्रपोजल भगवान ने रिजेक्ट किया होगा, बहुत सारा डाउट था उसके अंदर, बहुत दिल में कशमकश, मराठी में कहते घालमेल, मतलब बहुत हृदय ऊपर नीचे हो रहा था उसका, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। इसको कहते हैं उत्सुकता, इसको कहते हैं एंग्जाइटी। जब भगवान के लिए हम लोग एंग्शियस बन जाते हैं ना, तो भगवान जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी जो कशमकश है भगवान के लिए होनी चाहिए, पैसे के लिए नहीं होनी चाहिए, प्रमोशन के लिए नहीं होना चाहिए, कितना प्रमोशन मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, इंक्रीमेंट कितना होगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना चाहिए। भगवान कब मिलेंगे उसके लिए टेंशन होगा मन में आपके, तो तुरंत भगवान प्राप्त हो जाएंगे। तो उसी प्रेम की वजह से उसने उनको पहचाना और वो सीढ़ियाँ उतर रही थी बहुत ही खुश होकर, आनंदित होकर, धन्यवाद देते हुए। और अचानक भगवान वहाँ से आए, ये सोने का समय नहीं है। अब भगवान आकर, हाँ जैसे कहते ना मराठी मध्ये, अनेक लांडग्यांच्या मधून भगवंताने सिंहाप्रमाणे त्या हरिणीला उचललं। सब लोग जो थे ना, क्या कहते हैं उसको, भेड़िया लोग, राजकुमारों को भेड़िया कहा गया है, जो ऐसे उनके मुंह से पानी टपक रहा था द्रौपदी रुक्मिणी को देखकर, हाँ अरे इतनी सुंदर कन्या, ये मेरी क्यों नहीं होती है, ये शिशुपाल को क्यों दी जा रही है। लेकिन उनको पता नहीं है कि शिशुपाल का नंबर भी इधर नहीं है। तो भगवान अचानक आते हैं, शांति से आते हैं, ऐसा नहीं कि वो भाग भाग के आके, ऐसे शांति से आते हैं सबके बीच में से, उनकी माता भी खड़ी है, उनकी सहेलियां भी खड़ी हैं, सब लोग खड़े हैं, उनके बीच में से आते हैं, उनका दाहिना हाथ पकड़ते हैं, सीधे इसको ले जाते हैं, रथ पे चढ़ाते हैं और जाने लगते हैं सबके बीच में से। और ऐसा वर्णन शास्त्र में आया है कि ये घटना होने के पहले जब वो पहली बार उतरी नीचे से और सबको नजर आई, तो घोड़े पे से सब लोग बेहोश होकर गिर गए, इतनी वासना उनके अंदर पैदा हो गई। अरे मेरी पत्नी होती तो कितना अच्छा था, उसको सौंदर्य देखकर इतने मोहित हो गए कि इतने बड़े बड़े योद्धा महारथी लोग जो है घोड़े से नीचे गिर गए। और उसमें उस बीच में भगवान ने उसको हाथ पकड़ के रथ में बिठा लिया, उतने में जरासंध जग गया, सबको जगाया, अरे जगो जगो क्या गिर गए हो, देखो तुम्हारे सामने से लेके जा रहा है, ये ऐसे कैसे हो रहा है, ये सब क्या अधिकार है, ये हमारा अपमान है, हमारे होते हुए ये सबके सामने एकदम रुबाब से रुक्मिणी को लेके जा रहा है, कुछ करना चाहिए। तब लोग अपने अपने सवार के फिर घोड़े में बैठ गए। अब सब लोग ने उनको आक्रमण किया, सावधान कृष्ण तुम रुक्मिणी को नहीं ले जा सकते। भगवान ने यू टर्न लिया और सबसे युद्ध किया, सबको परास्त कर दिया। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत सुंदर युद्ध का वर्णन है, कैसे भगवान ने बाण मार कर इसके रथ उड़ाया, इसका मुकुट उड़ाया, इसके रथ के पहिए तोड़ दिए, उसके बाण तोड़ दिया, उसका धनुष तोड़ दिया और सब लोगों को शस्त्रहीन करके सब लोग भागने लगे। फिर जरासंध ने सोचा, अरे जिसका विवाह हो रहा है वो तो मेकअप कर रहा है उधर, उसको नहीं पड़ी है तो हम लोग क्यों झगड़े उसके लिए, हाँ शादी तो उसकी है, हम लोग बेकार में लड़ रहे हैं, हमारा क्या कनेक्शन है इसके अंदर। ऐसा उनको बाद में ध्यान में आया, लेकिन पहले इतनी वासना थी मन में कि उसी के लिए वो लड़ने लगे। और फिर अपने आप वो पीछे पीछे हट के निकल गए सब लोग। उतने में खबर पहुंच गई जहां पर ड्रेसिंग रूम के अंदर मेकअप मैन के पास कि तुम्हारे होने वाले सुंदर पत्नी को श्री कृष्ण भगवान आके ले गए। तो बहुत डिप्रेशन में गया वो बेचारा, बहुत दुखी हो गया वो, बड़ा योद्धा था वो, लेकिन उसको क्या पता था कि अभी कुछ ही क्षणों में मेरा विवाह होने वाला है और ये न्यूज़ आएगा ऐसा, तो वो डिप्रेशन में गया। तो उतने में रुक्मी आया, रुक्मिणी का भाई, जिसने विवाह ये निगोशिएशन करके बातचीत करके सलाह मशवरा करके फिक्स किया था। रुक्मिणी ने कहा, अरे शिशुपाल कोई डरने की बात नहीं, मैं हूं ना, मेरे होते हुए क्या उसकी हिम्मत कि वो ले जाए उसको, मैं अभी उसको जाके लेके आता हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ। रुक शिशुपाल, देखो कैसे हवा में गोली मार रहा है। क्या बोलता है वो, मैं ऐसा मतलब उसको वो, हम लोग क्या करते हैं ना डिप्रेशन पेशेंट को क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग उसको हौसला देने के लिए उसको हिम्मत देते हैं हम लोग, डोंट वरी मैं हूँ आपके साथ, मैं आपको हेल्प करूँगा। तो वैसे उसको होश और हौसला देने के लिए वो क्या बोलता है, मैं आपके सामने अभी प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं अभी जाकर रुक्मिणी को तो लेके आऊँगा आपके लिए और कृष्ण को परास्त करूँगा, कृष्ण को मार डालूंगा, उसके बिना मैं कौंडिन्य नगरी में, विदर्भ नगरी में प्रवेश नहीं करूँगा। कितना मूर्ख व्यक्ति था वो, है ना, तुरंत सैंद लेके जाता है। शिशुपाल तुम तो दूल्हा हो, तुम बैठो मेकअप चालू रखो तुम्हारा, मैं अभी आता हूँ, तुम्हारा मुहूर्त पे शादी होगा, चिंता मत करना। तो फिर वो वहाँ पहुँचते हैं और तब तक तो बलराम जी भी बहुत बड़े प्रेम से कृष्ण के साथ में आए हैं, वो भी सेना को लेकर आए हैं, उनको भी पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा इधर, तो मेरा होना ज़रूरी है। तो ये कृष्ण जा रहे हैं आगे, तो उसमें से रुक्मी का सैन्य आता है, सावधान कृष्ण, मुझसे युद्ध किए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते। फिर यूटर्न लेते हैं, फिर तो बहुत घमासान युद्ध होता है। रुक्मी बड़ा वीर था, ऐसा कोई साधारण नहीं था, वो बहुत भयंकर अच्छा वीर था। वो इतना बड़ा घमासान युद्ध वह सब देखते रह गए और भगवान ने अनेक अनेक बाणों से उसका मुकुट, उसके रथ का जो ध्वज था, रथ के पहिए, रथ को सब चकनाचूर कर दिया, वो शस्त्रहीन कर दिया। उसने गदा उठाई, उसने धनुष उठाया, चार बार धनुष उठाया, चार बार दोरी तोड़ दिया उसका, उसको कहते हैं प्रत्यंचा, उसको तोड़ दिया। फिर गदा उठाई तो गदा को चकनाचूर कर दिया बाण से। फिर वो तलवार निकाल के रथ से कूद कर भगवान की ओर भागने लगा, तो भगवान ने और बाण चलाया और तलवार को टुकड़े टुकड़े कर दिए, सारे शस्त्र समाप्त हो गए उसके। और वो जमीन पर था, तो भगवान भी रथ से जमीन पर उतरे और तलवार निकाल कर उसका सर काटने वाले थे, तो क्या हुआ, हाँ किसने रोक लिया, अरे रुक्मिणी है ना उसमें, दुल्हन नई नवेली, वो रथ में है उसके साथ में, वो देख रही है मेरा पति मेरे भाई के साथ युद्ध कर रहा है, उसका क्या स्थिति हो गया होगा। आप सोच सकते हैं इतने सालों की तपस्या और प्रेम और प्रार्थना करने के बाद में पहली बार दर्शन हुआ मेरे प्रियतम का, और मेरे मन के अनुसार उसने मुझे उठा के ले भी लिया, और कुछ समय के बाद 15 मिनट के बाद में क्या हो रहा है, एक घमासान युद्ध हो रहा है वो भी मेरे प्रिय पति और मेरे प्रिय भाई के साथ। भाई का बहुत प्रेम था अपनी बहन पर। तो जैसे भगवान ने तलवार उठाया तो रुक्मिणी उनके पैर पर गिरी और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर ली, हे प्राणनाथ, हे मेरे प्रियतम, ये मेरे भाई हैं, बड़े भ्राता हैं, इन्हें आप मत मारो, इनको जीवन दान दो, उनको माफ़ करो। कहते हैं कि रिश्तेदारों को गुनाह करने पर भी माफ़ किया जाता है। तो भगवान ने भी तलवार रोक लिया, क्योंकि उनकी भी नई नई पत्नी थी, हाँ ऐसा करके कैसे चलेगा उनको, हाँ साथ में जीना है बहुत साल के बाद। तो उतने में बलराम जी वहाँ पर आते, तो भगवान क्या करते हैं, बलराम जी आने के पहले ही, अभी क्या है कि उनको पत्नी का भी भाव संभालना था कि पत्नी को दुख न हो जाए, उसके भाई का वध नहीं करना था, और वो भाई जो है वो जो गुस्ताखी कर रहा है उसको दंड भी देना था। क्षत्रियों के लिए अपमान जो होता है ना वो मृत्यु से बढ़कर होता है। तो भगवान क्या करते हैं, उसकी आधी मूछ काट डालते हैं, उसके आधे बाल काट डालते हैं, आधी दाढ़ी भी काट डालते हैं, और थोड़े थोड़े बाल रखते हैं, बाकी सब उड़ा देते हैं, मतलब अपमानित कर देते हैं उसको पूरा। और उसको अपना एक वस्त्र निकालते हैं, उसको वस्त्र से बांध कर कैदी बनाकर सामने लाते हैं और फिर उसकी काट छाट कर देते हैं। और उसके बाद में बलराम जी वहाँ पर आते हैं और अपनी नई नई भाभी को थोड़ा इम्प्रेस करने के लिए बोलने लगते हैं, हरे कृष्ण तू कैसा है, भाभी की दिल को जानता नहीं, भाभी का दिल कितना कोमल है, कितना प्रेम है उसके भाई के ऊपर, तुमने ऐसी अवस्था कर दी उसकी। तो कृष्ण कहते कि ये दंड देना आवश्यक था उसको, क्योंकि मैं मार तो सकता नहीं था, क्योंकि वो मेरा साला है, इसलिए मैंने उसको दंड दिया है। ऐसे बहुत बड़ा संवाद होता है। फिर रुक्मिणी बहुत रोती रहती है, तो बलराम जी भैया आकर उसको मनाते हैं, चिंता मत करो मैंने कृष्ण को समझा दिया है, वो उसको अभी और अपमानित नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए, और वैसे भी रिश्तेदारों को अभी मारते नहीं हैं, वो गुनाह करने पर भी उसको माफ़ किया जाता है, तो आगे इसके आप में कुछ नहीं होगा। तो बलराम जी के मीठे मीठे और प्रेम भरे वचनों से रुक्मिणी जी भी शांत हो जाती है। और अभी रुक्मी का प्रॉब्लम मालूम है आपको क्या, अब जाए कहाँ, प्रतिज्ञा लेकर आया ना वो, जब तक कृष्ण को नहीं मारूंगा और रुक्मिणी को लेकर नहीं आऊंगा तब तक मैं राज्य वापस नहीं लौटूंगा, वापस लौटने का चांस ही नहीं। तो उसने उधर ही झोपड़ी बनाया, उसका नाम था भोजकट, उसके बीच में एक राज्य है भोजकट, वहाँ पर उसने अपना राज्य बसाया। और वहाँ पर इतना बना बनाया मेकअप जो है वो सब बेकार गया, शिशुपाल को अपने घर जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर कृष्ण भगवान द्वारा रुक्मिणी को लेकर द्वारका में चले गए, और ये वहीं बस गया अपने मित्रों के लेकर, बचे हुए सैन्यों को लेकर वहीं बस गया और वहीं अपना राज्य बना दिया। और फिर रुक्मिणी को लेकर भगवान द्वारका पहुँचते हैं और वहाँ पर बड़ी धूमधाम से भगवान का विवाह होता है। और ये किडनैप होने की वजह से थोड़ा भोज राजा जो था ना, भीष्मक राजा विदर्भ राज में, अभी उनके लिए भी इच्छा थी बहुत कि कृष्ण भगवान की शादी हो जाए मेरी बेटी से, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि कृष्ण भगवान के द्वारा उसका अपहरण किया जाए और फिर युद्ध हो जाए, फिर हलचल मच जाए, ऐसे कोई उम्मीद नहीं थी। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग और दिल थोड़ा मैला हो गया था। तो नारद मुनि जी और बहुत सारे मुनि विदर्भ में जाते हैं और पिताजी से बात करते हैं कि देखो ऐसा है, ऐसा होता है, हाँ सब जगह होता है, अनेक प्रकार के विवाह होते हैं। एक कहते हैं राक्षस विवाह, मतलब बल के आधार पर भरी सभा में जाकर आप कन्या को छीन के ले सकते हो और जिन्होंने आक्रमण किया उससे युद्ध करके परास्त कर सकते हो, उसको राक्षस विवाह करते हैं। और एक है गंधर्व विवाह, मतलब भाग के विवाह करते हैं दोनों। ऐसे 6 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। तो जो शक्तिशाली होता है, जैसे भीष्मदेव ने कैसे किया था, 3 कन्याओं को उठाकर लेके आया था वो काशीराज से, अंबा, अंबालिका और अंबिका, चित्रांगद, विचित्रवीर्य, इन लोगों के लिए किया था ना भीष्मदेव ने। तो उसको कहते हैं राक्षसी विवाह। तो उसमें कोई गलत नहीं है, शास्त्र के अनुसार है, ऐसा होता है, जो बलशाली है वो ये कर सकता है। तो फिर भीष्म समझ जाते हैं कि ये भगवान की दिव्य इच्छा है, इसको मानना चाहिए। तो राजी हो जाते हैं और फिर वो भी अपना सैन्य और गिफ्ट और घोड़े और रथ लेकर क्या कहते हैं उसको, दहेज, डावरी लेकर वो द्वारका पहुंच जाते हैं। और फिर बड़ी धूमधाम से रुक्मिणी देवी का भगवान के साथ में विवाह हो जाता है। बोलो रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की। तो ये हमारे इतिहास का सबसे पहला लव अफेयर है। हाँ उसके पहले भी हुए लेकिन ये बहुत सनसनी केस है। इसके अंदर भगवान ने अपना शौर्य दिखाया है, प्रेम भी जताया है। हाँ और ये भगवान की पहली पत्नी है, जो इसको महालक्ष्मी कहा गया है, जो राधा रानी का शक्ति का आविर्भाव है। ये कृष्ण भगवान के विष्णु तत्व के रूप में विस्तार होते हैं, अवतार होते हैं, और राधा रानी, रुक्मिणी देवी, गोपियाँ इन रूप में विस्तारित होती है। तो द्वारका में रुक्मिणी देवी भगवान राधा रानी की प्रधान विस्तार हैं, प्रधान उनका अवतार है, वो महालक्ष्मी है। उसके बाद में भगवान के और 7 विवाह हुए, 7 पत्रानियों के साथ, सत्यभामा, लक्ष्मणा, मित्रविंद्या, नग्नजीति, जमुना, ऐसे उनके 7 विवाह हुए। तो 8 उनकी पटरानियाँ हुई और सबसे बड़ी पटरानी रुक्मिणी थी। और उसके बाद में भगवान ने जरासंध के जेल से 16,100 राजकन्याओं को मुक्त किया, जिसको उसने अरेस्ट करके उसका नर बलि देकर उसको कुछ बड़ी शक्ति प्राप्त करनी थी। इसलिए हर एक राजा की राजकन्याओं को छीन छीन कर उसने आकर कैद करके रखा था, एक दिन यज्ञ करके उनको बलि देने के लिए। तो भगवान ने भीम के द्वारा जरासंध का वध किया और कारागृह में जाकर 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। अभी अगर आपको जेल से किसी ने फ्री कर दिया तो आप खुश होंगे ना, वो भी खुश हो गई लेकिन दुखी भी हो गई। उन्होंने कहा कि हमने कई रातें पराए घर में बिताई है, जरासंध के जेल में बिताई है, अभी हमारे माता पिता हमको स्वीकार नहीं करेंगे, ना कोई पुरुष हमको पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा, तो हमारा जीवन तो व्यर्थ हो गया, जेल में और जेल के बाहर हमारा क्या मतलब है, हमको तो आत्महत्या करनी पड़ेगी। और अगर आप हमें स्वीकार करते हो पत्नी के रूप में तो हमें कुछ समाज में दर्जा मिलेगा, हमारा कुछ पोजीशन बनेगा, कुछ स्टेटस बनेगा। तो उनके आत्महत्या को बचाने के लिए भगवान ने उनसे सभी कन्याओं से विवाह किया और उनको द्वारकाधीश की पत्नी का दर्जा दिया। लोग समझते हैं कि भगवान बड़े कामुक हैं, बड़ी काम वासना है उनके अंदर, इतनी सारी पत्नियां करके उन्होंने आनंद लेने का प्रयास किया, ऐसा नहीं है। 16,100 रानी, 100 कन्याएं आत्महत्या करने पर निश्चय कर लिया था उन्होंने, क्योंकि अभी हमारे जीवन में हमारा क्या बचा है, क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या हमारे लिए गति है। भगवान ने कोई बात नहीं, हम आपसे विवाह करेंगे। तो भगवान ने सबको द्वारका में जाकर विवाह किया और हर एक पत्नी को एक सुंदर महल बना दिया। और द्वारका में ऐसे 16,108 महल बनाए उन्होंने, एक पत्नी को एक एक दिया, और वो 16,108 रूप में हर एक पत्नी के साथ में रहा करते थे। राज दरबार में जाते समय एक बनकर दरबार में पहुंचते थे, दरबार से आते समय 16,108 रूप धारण करके हर एक घर में प्रवेश करते थे। उन्होंने हर एक पत्नी को 10 पुत्र और एक कन्या दी। उनका खुद का ही वंश जो है वो बहुत बड़ा था, जो यादव वंश नाम से प्रसिद्ध है, नारायणी सेना के नाम से प्रसिद्ध है। तो भगवान जो है वो जो कार्य करते हैं वो दिव्य होता है, वो हम उसकी तुलना नहीं कर सकते। इसलिए जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। लड़कियों के बीच में बहस हो रही है कि खत में और क्या लिखा था, आपको पता करना चाहिए। तो उसका उत्तर यह है कि श्रीमद् भागवत में ये पूरा खत दिया हुआ है। हाँ, कैसे एक भक्त कन्या जो है भगवान को प्रेम पत्र लिखती है, प्रेम की भावना व्यक्त कर रही है, लेकिन क्या उसका क्या कहते हैं उसको शरीफ, मतलब उसका एटिकेट क्या है, उसका शिष्टाचार क्या है, आप समझ सकते हो कैसा दिव्य प्रेम था उसके मन में भगवान के प्रति। तो इस कथा से हम समझ सकते हैं रुक्मिणी हरण, ये कथा श्रीमद् भागवत में बड़ी प्रसिद्ध कथा है। तो बोलो रुक्मिणी भगवान, रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की जय हो। लाल बटन लेफ्ट साइड, लेफ्ट का।